हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कल भरत और शोभा की बरसी का दिन था, इस वजह से चौहान फैमिली काफी इमोशनल हो रही थी। पूरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो इमोशनली वीक था। वेद ने अपनी तरफ से उन सबको स्ट्रांग बनाया था, लेकिन ये एक दिन ऐसा होता था जब वेद खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इस दिन अगर वेद से भी ज्यादा परेशान कोई होता था तो वो अक्षत था, क्योंकि उनकी मौत के वक्त वो सिर्फ 11 साल का था। वो अक्षत ही था जिसमें उनकी लाशों को सबसे पहले देखा था। अक्षत इस वक्त चौहान पैलेस के बेसमेंट में था, जहां भरत और शोभा का सामान रखा गया था। उनमें से कोई भी उस जगह पर आता नहीं आता था सिवाय अक्षत के। वो अकेले बैठकर रो रहा था, तभी वेद ने आकर उसे संभाला। वेद अक्षत के सीने से लगा हुआ था। उसने अक्षत को सहलाते हुए कहा, चलो बाहर चलते हैं, जितना इस जगह पर रहोगे उतना ही उनकी याद आएगी, तभी हम यहां नहीं आना चाहते हैं। मैं भी बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन उनकी यादें खींच ही लाती हैं। कई बार कोशिश की कि इन चीजों को हाथ लगाकर उन्हें अपने करीब करके मम्मी पापा महसूस करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती कि इन्हें छूकर भी देख सकूं। अक्षत ने धीमी आवाज में कहा, इतनी हिम्मत तो किसी की भी नहीं है। तुम फिर भी हम सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जो यहां बिना किसी डर के चले आते हो। वरना सच कहूं तो मुझे इस जगह पर डर लगता है, उनकी चीखें सुनाई देती हैं, वेद ने जवाब दिया। अभी भी वहां खड़े हुए वो काफी अनीजी होने लगा था। हालांकि अक्षत का इरादा था कि वो कहीं देर वहां पर बैठकर अपने गम को हल्का करे, लेकिन वो जानता था कि वेद इस जगह पर कभी नहीं आना चाहता था। अक्षत जल्दी से वेद से अलग हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। आगे से नहीं आऊंगा और मुझे कॉल कर दिया करो, मैं बाहर अपने आप आ जाया करूंगा, आप मत आया करो भाई यहां पर, अक्षत काफी केयरिंग वे में बोला। वेद ने उसकी बात पर हां में सिर हिलाया। वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे, तभी वेद ने एक नजर मुड़कर देखा। उसे सच में उस जगह से एक डर महसूस होता था। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और जल्दी से उस जगह से बाहर आ गया था। ऊपर आने के बाद वेद ने अक्षत की हालत देखी। उसकी आंखें रोने की वजह से हल्की सूज गई थीं और चेहरा भी लाल था। वेद ने उसे देखकर सिर हिलाया और बोला, लंच नहीं किया था ना तुमने? वैसे तो इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैसेज आने के बाद खुद को रोक नहीं पाया, कुछ मन ही नहीं कर रहा खाने को, अक्षत ने बुझी हुई आवाज में कहा। मैंने भी नहीं किया है, वेद ने शांत लहजे में जवाब दिया। आपने क्यों नहीं खाया? आपको पता है ना कि आपको डायबिटीज की दवाइयां लेनी होती हैं, और बिना खाना खाए आप दवाइयां नहीं ले सकते हैं। आपने आपका डोज मिस नहीं किया, ये ठीक नहीं है भाई। चलिए जल्दी से अंदर साथ में खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है, अक्षत अब वेद के लिए परेशान होने लगा। वेद अच्छे से जानता था कि उसका ध्यान उसे कैसे भटकाना है। उन सब के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी वेद और उसकी हेल्थ थी। उसके लिए वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। वेद अक्षत के साथ अंदर गया। आराध्य उस वक्त नीचे हॉल में खड़ी रानी को खड़ी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। पूजा में शामिल होने वाले लोगों के लिए शुद्ध सात्विक खाना बनना चाहिए, कोई भी बिना खाए नहीं जाएगा, आराध्या ने उसे समझाते हुए कहा। जी भाभी, मैंने लिख दिया है और इसकी लिस्ट दे दूंगी, मैनेजर साहब सब कुछ देख लेंगे, रानी ने जवाब दिया। आराध्या हर एक चीज अपनी आंखों के सामने उसी से लिखवा रही थी। इस बीच उन्होंने देखा वेद और अक्षत घर आए थे। उन दोनों को अचानक घर पर देखकर आराध्या थोड़ी हैरान रह गई। वहीं शिवांशा नीचे जा रही थी तो वो अचानक रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि इतनी तैयारी किस लिए चल रही थी। भाई, आप दोनों इस वक्त घर पर क्या कर रहे हैं? मैंने मैसेज किया तो था, मैं सब कुछ देख रही हूँ, उधर वंश भी सब संभाल रहा है, कोई कमी रह गई क्या? आराध्या ने थोड़ा हड़बड़ाकर पूछा। हाँ, कमी तो रह गई है, अक्षत ने उसे परेशान करने के लिए कहा तो आराध्या के चेहरे पर सच में परेशानी के भाव उभर आए थे। इससे पहले कि वो अक्षत को और तंग करता, वेद ने उसकी तरफ घूर कर देखा और आराध्या से बोला, तुम सबके होते हुए किसी चीज की कमी रही नहीं सकती है, किसी काम के चलते इस तरफ आना हुआ था, लंच नहीं किया था तो सोचा घर पर ही कर लूं, अक्षत ने भी कुछ नहीं खाया है और जिस तरह से तुम तैयारी में लगी हो साफ है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। हाँ, टाइम ही नहीं मिला, आराध्या ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। ठीक है, फिर लगवा लो खाना, साथ बैठकर खाते हैं, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ, वेद ने जवाब दिया और ऊपर कमरे में जाने लगा। आराध्या उनके लिए लंच अरेंज करवाने में लग गई। वहीं वेद जब ऊपर आया तो शिवांशा जल्दी से उसके पास आने लगी। शिवांशा को चेहरा देखकर वेद को सिर्फ और सिर्फ देवराज के धोखे और उस बेरहमी की याद आ रही थी जो उसने उसके माँ बाप के साथ की थी। इससे पहले शिवांशा वेद से आकर कुछ पूछती, उसके करीब आने से पहले ही वेद तेज और सख्त आवाज में बोला, वहीं खड़ी रहो, मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे सामने आने से, अलग कमरा दे दिया है ना, आप उसी में रहो। शिवांशा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जानती थी कि उसे किस गलती की सजा दी जा रही है। उसने कोई शिकायत नहीं की और तुरंत दूसरी तरफ पलटकर अपने कमरे में चली गई थी। दादा ने जख्म दिया और पोती बार बार उसे जख्म पर नमक छिड़कने के लिए सामने आ जाती है। वेद ने गुस्से में धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर फ्रेश होने के लिए चला गया। वेद कमरे में गया तो उसने देखा कि शिवांशा के लिए जो ब्रेकफास्ट की थाली गई थी वो वैसे के वैसे ही रखी हुई थी। वेद समझ गया था कि उसके गुस्सा करने की वजह से जरूर शिवांशा ने खाना नहीं खाया होगा। फिर कहेगी कि हम इसे खाना नहीं देते हैं। अब खाने को इस तरह छोड़कर अन्न का कौन अपमान कर रहा है, मरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेद ने दांत पीसते हुए कहा। एक बार फिर वेद की नफरत उस पर हावी होने लगी। वो तुरंत नीचे लंच के लिए पहुंच चुका था। अक्षत और आराध्या पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वेद के बैठते ही आराध्या ने कहा, मैं भाभी को बुला लेती हूँ, वो भी हमारे साथ ही खा लेगी। आराध्या उठने को हुई तभी वेद ने कहा, कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की। अक्षत और आराध्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो वेद ने खुद को नॉर्मल करके कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही थी। आराध्या ने आगे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप बैठ गई थी। सुबह उसने भी शिवांशा के बॉडी पर रैशेज देखे थे तो उसे लगा कि सच में शिवांशा की तबीयत बिगड़ गई होगी, लेकिन वेद का रवैया काफी ठंडा था। आराध्या और अक्षत ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में वो यही कह रहे थे कि शायद उनकी लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई होगी। वो लोग चुपचाप लंच करने लगे। खाना खत्म होने के बाद आराध्या ने बातों बातों में वेद से इस बारे में जानने के लिए पूछा, मैंने उन्हें बोला था कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, लेकिन उसने कहा वो बिल्कुल ठीक है। सच कहूँ मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। वेद सवालिया नजरों से आराध्या की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आया था कि आराध्या इस बारे में बात कर रही है। क्या नॉर्मल नहीं है, वेद ने तुरंत पूछा। कल रात पार्टी में उन्होंने जो ड्रेस पहना था उस वजह से उनकी बॉडी पर रैशेज निकल आए हैं, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ही थे, आराध्या ने बताया। क्या, और तुमने डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं किया, वो जिद कर रही थी तो तुम मुझे बताती, वेद हल्के गुस्से में बोला।
वो सबको कितना भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, बरसी के नजदीक के दिनों में वेद काफी चिड़चिड़ा हो जाता था। ऊपर से शिवांशा के खाना ना खाने की वजह से वो पहले से उससे गुस्सा था। वहीं आराध्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। शिवांशा ने सुबह यही कहा था कि वेद ने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, आखिर शिवांशा ने उससे झूठ क्यों बोला था? उनका रिश्ता सच में अब आराध्या के दिमाग में भी सवाल पैदा कर रहा था। भाई वो, मैंने डॉक्टर से बात की थी, आराध्या हड़बड़ाते हुए उसे सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेद जल्दी से उठकर ऊपर जाने लगा। आराध्या उसके पीछे जाने को हुई तभी अक्षत ने उसको हाथ पकड़कर रोक लिया था। वो बोला, उन्हें अकेले जाकर सब कुछ सॉल्व करने दीजिए, इस बहाने शायद उनकी लड़ाई खत्म हो जाए। आप तो जानती हैं ना भाई को, कभी तो वो इतना गुस्सा करने लगते हैं और कभी बिल्कुल मोम की तरह सॉफ्ट हो जाते हैं। समझ नहीं आता भाभी उन्हें कैसे झेल रही है। समझ तो मुझे इनका रिश्ता नहीं आ रहा है अक्षत, भाभी ने सुबह मुझे कहा था कि भाई ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, जबकि भाई को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऊपर जब मैं कमरे में गई थी तो भाभी काउच पर सो रही थी। ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी, लेकिन तब तो वेद भैया कमरे में ही नहीं थे, वो बेड पर क्यों नहीं सो रही थी? आराध्या ने अपने सारे डाउट्स अक्षत के सामने रख दिए थे। सिर्फ अक्षत ही था जिससे वो खुलकर बात कर सकती थी, वो उसका देवर ही नहीं बल्कि उसका छोटा भाई, दोस्त, सब कुछ था। अक्षत ने उसे पानी का गिलास दिया और उसे शांत करते हुए कहा, काम डाउन माई शर्लॉक होम्स, अगर आपकी जगह नवी दीदी इतना उल्टा सीधा दिमाग लगाती तो फिर मुझे समझ आता, लेकिन आप कब से ये जासूसी का खेल खेलने लगी? ये पूरी तरह नॉर्मल है कि आपके और वंश भैया के बीच लड़ाई नहीं होती है, तब आप क्या करती हैं? उससे बात नहीं करती जब तक वो मुझे मना नहीं लेता और ना ही उसका कोई काम करती हूँ, आराध्या ने मुंह बनाकर जवाब दिया। तो बस ठीक वैसे ही भाभी भी उनसे नाराज है और इसी बात में लगी होगी कि भाई जाकर उन्हें मनाए, और हमारे भाई को हमसे बेहतर कौन जान सकता है, उन्हें किसी को मनाना आता ही नहीं है, अक्षत ने उन्हें समझाते हुए कहा। अक्षत के समझाने पर आराध्या ने इसे नॉर्मल समझने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में भी अब ये बात आ गई थी कि अगर वेद और शिवांशा का रिश्ता सच में नॉर्मल है या नहीं।
वहीं आराध्या के बताने के बाद वेद जल्दी से शिवांशा के पास उसके कमरे में पहुंचा। उसे देखते ही शिवांशा दूसरी तरफ पलट गई थी। शिवांशा ने खुद को पीछे से खुद को साड़ी से पूरी तरह कवर कर रखा था। वेद ने उसके हाथों की तरफ देखा जिस पर लाल निशान बने हुए थे। वेद ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करके कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जरूरत नहीं है, आराध्या भाभी ने दवाई मंगवा ली थी, मैंने लगा ली है, शिवांशा ने धीमी आवाज में बिना डरे जवाब दिया। फिर भी एक बार चेक करवा लो, वेद बोला। उसे चिढ़ हो रही थी कि अब वो जब खुद उसके पास चलकर आया है तो शिवांशा उसके साथ रूड बिहेव कर रही है। नॉर्मल रैशेज हैं, ठीक हो जाएंगे, शिवांशा ने फिर से मना कर दिया। देखो जिद मत करो, चुपचाप मेरी तरफ देखो, मुझे देखना है कि किस हद तक रैशेज हुए हैं, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि डॉक्टर के पास जाना है या नहीं, वेद ने दांत पीसते हुए कहा। शिवांशा वेद के कहने पर उसकी तरफ पलट गई थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसने बिल्कुल धीमी और शांत आवाज में कहा, जहां जहां कपड़े लगे थे वहां ज्यादा हुए हैं, अंदर की साइड आप नहीं देख पाओगे। वो हिचकिचाते हुए अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। वहीं वेद समझ गया था कि शिवांशा क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर किसी लेडी डॉक्टर के पास चलते हैं, उसके साथ शायद तुम कंफर्टेबल हो जाओ। नहीं, मैं किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, मैंने कह दिया ना मैं ठीक हूं, अचानक शिवांशा ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, जिसे सुनकर वेद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ये पहली बार होगा जब शिवांशा ने तेज आवाज में बात की होगी। हालांकि बोलने के बाद उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और धीमी आवाज में कहा, देखिए मैं आप पर गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, अगर मुझे लगेगा कि मेरी कंडीशन खराब हो रही है तो मैं आराध्या भाभी को जाकर बता दूंगी। आपने ये कहा था ना कि आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है, तो ठीक है मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, आप अपने काम कर लीजिए। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से जाने लगा। अचानक शिवांशा को न जाने क्या हुआ कि वेद के दरवाजे के पास पहुंचने पर उसने पीछे से कहा, सुनिए। वेद उसकी तरफ पलटा और वही उठाकर देखा। शिवांशा ने उससे पूछा, नीचे किस चीज की तैयारी चल रही है? तुम्हें नहीं पता? वेद कड़वाहट से बोला, या अनजान बनने का दिखावा कर रही हो? शिवांशा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वो चुपचाप वेद की तरफ देख रही थी। तभी वेद बिल्कुल ठंडे बेजान स्वर में बोला, सालों पहले तुम्हारे दादा ने इस घर की खुशियां एक झटके में खत्म कर दी थीं। यूं समझ लो कि हर साल उसी का मातम मनाते हैं। तुम्हारा दादा उस दिन बहुत खुश हुआ था, तो तुम भी खुश हो जाना। इतना कहकर वेद वहां से चला गया तो वहीं शिवांशा को एहसास हो गया था कि कल उसके मम्मी पापा की बरसी थी। शिवांशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सुबकते हुए कहा, और इन्हें ये क्यों लगता है कि बर्बाद सिर्फ यही हुए थे? मैं क्यों इस दिन को लेकर खुशियां मनाऊंगी, जबकि मेरी जिंदगी का बर्बादी का कारण वही दिन था। शिवांशा वहां बैठकर रोने लगी थी। वो हमेशा उस दिन को कोसती थी जब देवराज ने भरत और शोभा को मारा था। उसी की वजह से उसका परिवार बर्बाद हुआ था और उसे राजावत फैमिली में भेजा गया, जहां उसे दुनिया जहान की तकलीफें और जिंदगी भर का ट्रॉमा मिला था।